उत्तर पूर्व अद्भुत रोमांचक और मनोहारी उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।
पूर्वोत्तर डायरी के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। स्वीकार कीजिए चंद्रिका जोशी का नमस्कार। आज के संस्करण में हम आपके लिए लेकर आए हैं पूर्वोत्तर के विभिन्न क्षेत्रों से नई नई जानकारी। तो आधे घंटे के लिए इस सफर में हम देश के पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए आपको लिए चलते हैं, जहां आप पूर्वोत्तर की अद्भुत क्षमता, वहां की प्रकृति की सुंदरता और पारंपरिक विरासत को शब्दों के माध्यम से महसूस करेंगे। तो आइए चलें पूर्वोत्तर की ओर।
पूर्वोत्तर डायरी।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस सप्ताह नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। आध्यात्मवाद के क्षेत्र में अनुकरणीय योगदान के लिए तोंगदान रिम्पोचे को मरणोपरांत पद्म भूषण प्रदान किया गया।
श्री तोंगदान रिम्पोचे मरणोपरांत अध्यात्म उनकी पत्नी श्रीमती लोबजांग चोरोल श्रीमती पार्वती बरुआ समाज सेवा। श्रीमती स्मृति रेखा चकमा वस्त्रकला। श्री जोरदेन लेपचा शिल्पकला।
ऐतिहासिक घटनाओं और पारिवारिक मूल्यों की कहानियों को दर्शाती बांस की टोपी बनाने के लिए सिक्किम के कारीगर जोरदेन लेप्चा को वर्ष 2024 के पद्मश्री सम्मान के लिए चुना गया। 50 वर्षीय शिल्पकार पिछले 25 वर्षों से लेप्चा जनजाति की सांस्कृतिक विरासत को संजो रहे हैं। उन्होंने बताया कि वे एक साल के भीतर 6 या 7 टोपियां तैयार करते हैं। इसमें समय, कौशल और अद्भुत एकाग्रता की आवश्यकता पड़ती है। पद्मश्री भारत सरकार द्वारा आमतौर पर भारतीय नागरिकों को दिया जाने वाला वो सम्मान है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा और सार्वजनिक जीवन में उनके विशिष्ट योगदान को मान्यता प्रदान करता है और साथ ही उन्हें सम्मान देता है। सिक्किम के मुख्यमंत्री ने जोरदेन लेप्चा को पद्मश्री पुरस्कार मिलने पर बधाई दी। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने जोरदेन लेप्चा को प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार मिलने पर अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, लेप्चा को पिछले 25 वर्षों से पारंपरिक टोपियां बुनने और बांस की कारीगरी के माध्यम से जनजातीय सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में उनके अथक प्रयासों के लिए प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान वास्तव में उनके समर्पण और योगदान का प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने ये भी लिखा कि ये वास्तव में सिक्किम के लिए बेहद गर्व का क्षण है जो इस क्षेत्र के भीतर समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्रतिभा को प्रदर्शित करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में अलंकरण समारोह के दौरान सिक्किम में कला के क्षेत्र में श्री लेप्चा को पद्मश्री प्रदान किया। 28 जुलाई 1971 को सिक्किम के मंगन जिले में जन्मे श्री लेप्चा के शुरुआती वर्ष उनके माता पिता की शिक्षाओं से आकार लिए हुए थे जिन्होंने उन्हें बांस की इस शिल्प कला से परिचित कराया था। प्राचीन परंपराओं को पुनर्जीवित करने के गहरे जुनून से प्रेरित होकर ही श्री लेप्चा ने टोपियां तैयार करने की जटिल तकनीकों में महारत हासिल की और ये महारत हासिल करना आसान नहीं था, उन्होंने इसमें खुद को डुबो दिया। निर्णायक क्षण 1997 में तब आया जब उन्होंने राज्य के उद्योग विभाग द्वारा आयोजित पारंपरिक टोपी बुनाई के 6 महीने के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। वर्ष 2005 में श्री लेपचा ने राज्य हस्तशिल्प और हथकरघा निदेशालय द्वारा गंगटोक में महत्वाकांक्षी कारीगरों के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित करके अपने ज्ञान और अपने कौशल को साझा करना शुरू किया। उनकी प्रतिबद्धता ऐसे देखी जा सकती है कि वे निशुल्क अपने आवास पर प्रशिक्षण सत्र आयोजित करते थे, जिसमें वो लेपचा टोपी बुनाई के प्राचीन शिल्प को अपनाने और उसका प्रचार प्रसार करने में योगदान देते थे। श्री लेपचा की विरासत व्यक्तिगत उपलब्धियों से एकदम परे है। ये सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित करने, उन्हें कायम रखने में एक व्यक्ति के प्रभाव की एक कहानी है। अपने प्रयासों के माध्यम से उन्होंने न केवल पोषित सांस्कृतिक विरासत की रक्षा की है, बल्कि अनगिनत लोगों को अपनी इस विरासत को अपनाने और इस शिल्प कौशल के माध्यम से खुद को बनाए रखने के लिए सशक्त बनाया है। अपने समर्पण और कड़ी मेहनत के माध्यम से श्री लेपचा की विशेषज्ञता को वास्तव में रेखांकित किया गया है। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने योग्यता प्रमाण पत्र और सिक्किम राज्य के लिए मास्टर शिल्पकार का प्रतिष्ठित पुरस्कार उन्हें पहले प्रदान किया था। इस बीच नागालैंड की बात करें तो भारत में जापान के राजदूत हिरोशी सुजुकी ने नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो से इस सप्ताह संयुक्त रूप से कोहिमा शांति स्मारक का उद्घाटन किया और इको पार्क कोहिमा की आधारशिला भी रखी। कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क का एक विशेष महत्व है क्योंकि ये जापान सरकार और जापान के अंतर्राष्ट्रीय निगम एजेंसी के बीच नागालैंड सरकार के सहयोगात्मक प्रयास का उत्सव कहा जा सकता है। ये न केवल ऐतिहासिक महत्व का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि शांति और सुलह का एक प्रतीक है और इसका गहरा शैक्षिक मूल्य भी है। इस बीच सिक्किम से हमारे गैंगटोक संवाददाता इम्बोमचा शर्मा ने हमें बताया कि सिक्किम के राज्यपाल ने सिक्किम केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर का इस सप्ताह दौरा किया। सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य नामची जिले के यांगंग में विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर का दौरा किया। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अविनाश खरे और इसके रजिस्ट्रार लक्ष्मण शर्मा के साथ साथ विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों, शिक्षकों और कर्मचारियों ने राज्यपाल महोदय का गर्मजोशी से स्वागत किया। यात्रा के दौरान राज्यपाल ने यांगंग में विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर की स्थापना पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए संस्थान के भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी प्रेषित की। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय की टीम से बाधाओं से निपटने के लिए दृढ़ संकल्प और ईमानदारी के साथ काम करने का आग्रह किया। उन्होंने भविष्य की ओर देखने के महत्व पर भी बल दिया और कहा कि इस तरह के दृढ़ संकल्प के साथ आगे का यानी भविष्य का रास्ता स्पष्ट और साथ ही साथ आसान भी हो जाता है। नए परिसर के महत्व पर चर्चा करते हुए राज्यपाल ने इस बात पर बल दिया कि जिम्मेदारी की भावना सिक्किम केंद्रीय विश्वविद्यालय की रैंकिंग को अवश्य बढ़ाएगी। उन्होंने बाधाओं पर काबू पाने में टीम वर्क के महत्व पर भी बल दिया और प्रोफेसरों, विद्वानों और छात्रों से समाज और समुदाय के कार्यों में अधिक से अधिक योगदान करने का आग्रह किया। राज्यपाल ने कुलपति प्रोफेसर खरे की सराहना की, जिन्होंने अपना पद संभालने के बाद से परिसर के काम को आगे बढ़ाने में सराहनीय प्रयास किए हैं। उन्होंने नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठित विरासत से प्रेरणा लेते हुए सिक्किम केंद्रीय विश्वविद्यालय को एक प्रमुख शैक्षणिक संस्थान के रूप में स्थापित करने के प्रयासों को भी प्रोत्साहित किया। कुलपति ने विश्वविद्यालय की वर्तमान स्थिति और इसके भविष्य के विकास के लिए रोड मैप का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया।
सुंदर देश को
और इस बीच हम नागालैंड की बात करें तो आपको बताते चलें कि इस सप्ताह कोहिमा जिले के जाखमा गांव में पहला नागालैंड आलू महोत्सव आयोजित किया गया। इस महोत्सव का उद्देश्य राज्य में जैविक आलू की खेती को बढ़ावा देना और उसे अवसर और पहचान देना है। हमारी कोहिमा संवाददाता असनुओं ने बताया कि इसका उद्देश्य कृषि आधारित उद्यमों की स्थापना को बढ़ावा देकर किसानों की आय बढ़ाना, क्षमता निर्माण करना और तकनीकी की सहायता के माध्यम से मूल्य वर्धित उत्पादों के विकास को सुगम बनाना है और साथ ही साथ कृषि पद्धतियों और पर्यावरण का संरक्षण करना भी बेहद आवश्यक है। देश के कई अन्य राज्यों की ही तरह पूर्वोत्तर में भी कहीं कहीं तेज गर्मी देखने को मिल रही है। त्रिपुरा में पिछले कई दिनों से चल रही भीषण गर्मी का असर सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि उसका प्रभाव जानवरों पर भी पड़ रहा है। इसलिए तापमान में बढ़ोतरी होने से सिपाही जाला चिड़ियाघर प्राधिकरण को ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी जानवर बीमार ना पड़े इसलिए तत्काल कार्रवाई करने के लिए कहा गया है ताकि शेर बाघ तेंदुए जैसे जानवर गर्मी के कारण बीमार ना पड़े। हमारे अगरतला संवाददाता कुणाल शिंदे ने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग यानी जलवायु परिवर्तन का दंश मानव जाति पर अब भारी पड़ने लगा है।
द स्टिंगिंग इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज हिटिंग द मैनकाइंड हार्ड एंड इवन एनिमल्स आर नो एक्सेप्शन टू इट। द सिपाही जला जू, द ओनली जू इन त्रिपुरा विच हैज सेवरल एंडेंजर्ड स्पीशीज सच एज लायंस टाइगर्स लेपर्ड्स एक्सोटिक बर्ड्स बेयर्स एंड हिपोपोटामस इज सीन टेकिंग रिक्विजिट एक्शंस टू एंश्योर दैट एनिमल्स इन द एनक्लोजर डू नॉट फॉल इल due to depleting electrolyte levels. As part of the measure to provide some respite to the animals from soaring heat coupled with high humidity, the zoo authority has been splashing gallons of water in the enclosure of lions, tigers, leopards and are also keeping ice blocks in the cage so that the intensity of heat is reduced.
सिपाही जाला चिड़ियाघर त्रिपुरा का एकमात्र चिड़ियाघर है जिसमें शेर बाघ तेंदुए विदेशी पक्षी भालू और दरियाई घोड़े जैसी कई प्रजातियां हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है कि उनके बाड़े में गर्मी के स्तर के कारण कोई बीमार न पड़े। जानवरों को बढ़ती गर्मी के साथ उच्च आर्द्रता से कुछ राहत प्रदान करने के उपायों के अंतर्गत चिड़ियाघर प्राधिकरण शेर, बाघ और तेंदुए के बाड़े में पानी का छिड़काव लगातार कर रहा है और बर्फ के ब्लॉक यानी सिल्लियां भी रख रहा है ताकि गर्मी की तीव्रता पिंजरे में कम हो सके। सिपाही जाला चिड़ियाघर के निदेशक विश्वजीत दास से हमारे संवाददाता ने बात की तो उन्होंने कहा,
वी आर टेकिंग लॉट ऑफ मेजर्स एक्चुअली, सो लाइक गिविंग द प्रॉपर हाई वाटर कंटेंट फ्रूट्स टू द एनिमल्स एंड स्प्रेइंग ऑफ वाटर रेगुलरली एंड कीपिंग द सर्विस रूम दैट वी कॉल नाइट शेल्टर कूल एंड स्प्रेइंग वाटर। इवन वी आर गिविंग बर्थ टू द आवर जू एनिमल्स एंड दीज आर वी आर टेकिंग लॉट्स ऑफ मेजर्स एंड so far all the animals are in good condition. Moreover, we are in some enclosure of bigger carnivores like tigers and in zoo hospital also we are giving air cooler also, like in some birds we have exotic birds, so there we are giving fan also to keep the room cooler, and we are doing our best and hopefully there will be, so far animals are good now, as of quite vigilant, and as a team we are working very hard and we are prepared for this also, because since we know that there will be high rise of temperature and all the schools are closed in the state, so we have taken a lot of precautionary measures and we are monitoring on regular basis, and all our team we are very vigilant about this and hopefully we'll overcome this. We are taking around 30 number of ice blocks per day. If required we will take more also, but 30 is sufficient. Even the fruit content what we are giving the animal to our animals, so we are keeping all those fruits in a bucket, and in the we dip all those fruits in the ice, and just we frozen fruits, you can say we are giving frozen fruits also. Recently we got the instruction from Central Zoo Authority also, they have given some preventive measures what to do, what not to do, so movement of animal from one enclosure to another enclosure we are not doing it. And properly, like carnivore, like meat and all, we are not giving it in the noon time. We are giving it in the afternoon time, because due to this high temperature, they may not take the food properly. But other animals, we are giving this frozen fruits mixed with ice and all.
चिड़ियाघर के पशु चिकित्सक केशव देवनाथ ने कहा कि बाघ के बाड़े में बर्फ की सिल्लियां रखने, पानी का छिड़काव करने और कूलर लगाने के अलावा एक विशिष्ट तरह से आहार का पैटर्न बनाया गया है और उसका पालन किया जा रहा है, यानी कि उनके खाने पीने का एक अलग से चार्ट बनाया गया है ताकि ये देखा जा सके कि भोजन खाने के बाद जानवरों पर गर्मी का कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ सके।
We have taken lots of precautions there for maintain that control heat wave to the animals. Particularly, we have arranged ice cube for particular for every enclosure, every animals like lion, tiger, leopard, including omnivore animals like bear, monkeys also. Then they changed some food items also. We included like watermelons in the food diets, like our omnivore animals and herbivore animals. In case of carnivore animals like lion, tiger, we have added oral radiated solution for maintain their electrolyte balance in the body systems. They may feel comfort. In addition to that, we have arranged lots of waters and spraying the waters in the natural area around the enclosure also, to maintain their body conditions, good conditions. Till now, though not yet situation arise who animals become sick or disease condition for heat, will not yet arise till now. Still now not yet arise this situation. Now, though animals in that rescue animals, some rescue, what rescue is there only. But not much heat, not yet arise situation, still now arrive there.
जैसा कि पर्यावरण विदों का ये मानना है कि तापमान में वृद्धि लगातार हो रही है और मनुष्य अधिक पेड़ लगाकर और जलवायु के लिए हानिकारक गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए अब ये समय आ पहुंचा है कि आप अगली पीढ़ी को बेहतर भविष्य प्रदान करने के उद्देश्य से काम करें।
As the environmentalists observe that the rise in temperature is just a tip of an iceberg, it is time for humans to get into a combat mode by planting more trees and reducing the emission of greenhouse gases that cause further damage to the planet, and work with an objective to provide better future to the next generation. Kunal Shinde from Akashvani, Agartala.
गर्मी के मौसम मौसम के बीच पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में मौसम में कहीं कहीं तब्दीली भी देखी गई। कहीं तेज बारिश और आंधी तूफान देखा गया। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने बिष्णुपुर जिले के ओलावृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने का आश्वासन दिया। उन्होंने पिछले रविवार बारिश और तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि से प्रभावित कई क्षेत्रों में स्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रभावित लोगों को वित्तीय और राशन की सहायता उपलब्ध कराना शुरू कर दिया गया है और इसके साथ ही फसल की क्षति का सर्वेक्षण का काम भी चल रहा है और चिन्हित किसानों को इसकी सहायता राशि दी जाएगी। इस बीच थौबल और काकचिंग जिलों में बारिश हुई है। अब बात अरुणाचल की। अरुणाचल प्रदेश में 26 मुख्य जनजातियां और 100 से अधिक उप जनजातियां हैं और उनमें से एक जनजाति है आपातानी। आपातानी समुदाय के लोग अपना मुख्य उत्सव द्री मनाने की तैयारी कर रहे हैं। आइए अधिक जानकारी लेते हैं ईटानगर से हमारे संवाददाता राकेश डोले से।
आपातानी जनजाति अरुणाचल प्रदेश के एक प्रमुख जातीय समूहों में से एक हैं। कहा जाता है कि आपातानियों के पास व्यवस्थित भूमि उपयोग प्रथाओं और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन और संरक्षण के पारंपरिक ज्ञान सदियों से रही है। ये जनजाति विभिन्न त्योहारों, जटिल हथकरघा डिजाइनों, बैंत और बांस के शिल्पकला और जीवन पारंपरिक ग्राम परिषदों के लिए जानी जाती है। आपातानी जनजाति का मुख्य त्योहार द्री है और जाहिर सी बात है कि राज्य के अन्य जनजातियों की तरह द्री भी कृषि आधारित त्योहार है। द्री जुलाई के महीने में मनाया जाता है। इस त्योहार को अच्छी फसल और सभी लोगों में सुख समृद्धि के लिए मनाया जाता है। राज्य के विभिन्न आपातानी इलाकों में त्योहार को मनाने के लिए तैयारी अभी से शुरू हो गई है। राजधानी शहर ईटानगर में गोल्डन जुबली कैपिटल कॉम्प्लेक्स द्री फेस्टिवल कमेटी ने भी कई कार्यक्रमों के साथ राजधानी क्षेत्र में त्योहार की तैयारी शुरू कर दी है। समिति इस वर्ष ईटानगर में अपना 50वां द्री उत्सव मना रही है। हाल ही में सेलिब्रेशन कमेटी ने ईटानगर में अपना पारंपरिक बौसी आयु और गंगू एलू पर एक ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया। बौसी प्रेमियों को समर्पित एक तरह का लोकगीत है। बौसी गीत से दोनों प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति करती है। आयु आपातानी पुरुषों द्वारा उनके समुदाय के वंशजों और पूर्वजों का एक अनूठा स्वरपात है और गंगू एलू आपातानी महिलाओं द्वारा बजाया जाने वाला एक वाद्य यंत्र। यो संगीत वाद्य यंत्र साधारण धान के तना और एक पतली बांस की छड़ी से बनाए जाते हैं। सेलिब्रेशन समिति के अध्यक्ष डेनिस सुलू ने कहा कि यह प्रतियोगिता आपातानी जनजाति की सदियों पुरानी परंपरा को जीवित रखने का एक प्रयास है।
ये इस साल हमारा कैपिटल ब्रिज जो है 50th ईयर बना रहा है, सो दिस इज ए गोल्डन जुबली ईयर फॉर आपातानी ब्रिज इन ईटानगर। द फर्स्ट ब्रिज वॉज सेलिब्रेटेड इन 1974, तो ईटानगर जैसा ही खुला ब्रिज भी शुरू हुआ था, तो गोल्डन जुबली को मार्क करने के लिए हमने एक्सटेंसिव प्रोग्राम बनाया एंड वी स्टार्टेड ऑन 23rd February, वाकाथन करके जीरो से यहाँ तक आया। दैट वॉज किक ऑफ वॉज फ्रॉम जीरो एंड ईटानगर ग्राउंड से आज किक ऑफ है। तो आज का कॉम्पिटिशन है, आप प्ले ग्राउंड में देखेंगे कि बिची आयु गंगू एलू, ये कॉम्पिटिशन है। ये आपातानी का ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग्स हैं और चौथा में हम लोग सुनता था, अभी हम लोग इसको कभी सुनाई दे देता है, लेकिन इसको हम लोग रिवाइव करने के लिए पूरा जीरो से हमने वीडियोग्राफी लिया सबको, बुशी का किया, आयु का किया, गंगू और एलू।
मेरा केश डोले, आकाशवाणी समाचार, ईटानगर।
Thank you.
पाक्योंग जिला प्रशासन ने महिला सशक्तिकरण पर एक बैठक भी की है। पाक्योंग के जिला कलेक्टर श्री ताशी चोफेल ने बुधवार को पाक्योंग के सामुदायिक परिसर में महिला और बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। जिला कलेक्टर श्री ताशी चोफेल द्वारा महिला और बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित ये बैठक बुलाई गई थी। इसमें सभा का प्राथमिक उद्देश्य महिला और बाल विकास मंत्रालय के नेतृत्व में मिशन शक्ति योजना के कार्यान्वयन और दिशा निर्देशों पर चर्चा करना था। सत्र के दौरान समिति के सदस्यों से मिशन शक्ति योजना के बारे में महिलाओं के बीच जागरूकता बढ़ाने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए संबंधित विभागों के साथ सहयोग का आह्वान किया गया। समाज में महिलाओं के कल्याण को बढ़ाने के कई सुझाव भी पेश किए गए और शिकायतों को दर्ज करने और मुद्दों की तुरंत जांच करने की रणनीतियों के बारे में भी जानकारी मांगी गई। वरिष्ठ एसपी पाक्योंग श्री तेंजिंग लाओदेन लेपचा ने महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने पर कई बहुमूल्य विचार दिए। उन्होंने आपात समय के दौरान प्रभावी सहायता प्रदान करने के लिए पुलिस विभाग के साथ सहयोग पर भी बल दिया। वन स्टॉप सेंटर योजना की केंद्रीय प्रशासक सुश्री चोंग चुकी भूटिया ने मिशन शक्ति योजना के उद्देश्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। ये मिशन हिंसा से प्रभावित लोगों को व्यापक देखभाल करता है, सहायता प्रदान करता है और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण केंद्र की जिला मिशन समन्वयक सुश्री सृष्टिका शर्मा ने समर्थ योजना के उद्देश्यों के बारे में बताया। इसका उद्देश्य विभिन्न पहलों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। इसमें मौजूदा कार्यक्रमों को एकीकृत करना और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए फंडिंग यानी कोष प्रदान करने जैसे बातों को भी शामिल किया गया। हमारे संवाददाता दिलीराम दुलाल ने बताया कि सहयोगात्मक प्रयास से पाक्योंग में महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता प्रदर्शित की गई। और अब आइए हम आपको त्रिपुरा का एक सुंदर सा गीत सुनवाते हैं। पूर्वोत्तर का समूचा इलाका हवाई सड़क और रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। कोई भी जगह अब दूर नहीं है, तो परंपरा और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर पूर्वोत्तर के राज्यों को अवश्य ही देखें, आनंद लें और पूर्वोत्तर में आप अवश्य ही अद्भुत आनंद, अद्भुत क्षमता और कौशल को देखेंगे और उसे महसूस करेंगे। तो अपने देश को देखिए और जानिए और चले आइए पूर्वोत्तर की ओर। अब आपसे अनुमति लेने का समय आ पहुंचा है। कार्यक्रम आपको कैसा लगता है हमें अवश्य बताएं। आपकी प्रतिक्रिया का हमें हमेशा ही इंतजार रहता है। हमारा ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com। प्रतिक्रिया और सुझाव के लिए हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है 9289094044 9289094044। तो अब अगले रविवार आपसे फिर मुलाकात होगी। अब हमें अनुमति दीजिए। आलेख और संकलन चंद्रिका जोशी, तकनीकी सहायक दानिश जैदी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
उत्तर पूर्व अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर दायित्व।